சித்தமணந்தமணிந்திய மணுவமபமத்தசோகமணவச்சம் கேவலபஹோஹணிஜ்ய துண்ணயதிமிரம் ஜினம் நமஹ.
यह धौला शास्त्र जो है वीरसेन आचार्य ने यह टीका रची है. इसका मूल शास्त्र जो षटखंडागम है जिसे भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य ने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार रचा था. 86 पेज पर हम आए हैं, परंतु कल का विषय फिर देखेंगे. नए का विषय था और उसमें हमने चर्चा की थी, फिर दोबारा क्योंकि नया विषय है हम फिर इसको देखते हैं. 73 पेज से हमारा कौन सा विषय चल रहा है उसकी बात करेंगे हम. यहाँ जीव स्थान का अवतार हो रहा है, यानी अभी ग्रंथ शुरू हो रहा है, ऐसी बात है ना. तो वहां पहले कहते कि उसके ये जो 6 खंड है उसकी 6 खंडों के यहाँ नाम लिखे हैं, और उसमें अभी अवतार होता है तो उसके कितने प्रकार होते हैं उसकी चर्चा यहाँ की है. तो अवतार 73 पेज पर नीचे का पैराग्राफ. अवतार 4 प्रकार का है, उसमें उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम. उपक्रम के भी हमने 5 भेद देखे थे, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार. उसमें अनुपूर्वी में हमने पूर्वानुपूर्वी, अनुलोम यानी क्रमिक, क्रम से बताना, शुरू से अंत तक उसको पूर्वानुपूर्वी कहा था. पश्चादानुपूर्वी ने विलोम क्रम या प्रतिलोम क्रम यानी उल्टा क्रम, उसको कहते पश्चादानुपूर्वी. और कहीं से भी शुरू करना उसको कहते यथा तथानुपूर्वी, यानी बीच का कोई भी विषय आपको विषय हो या कोई इन विदाउट एनी ऑर्डर उसका क्रम छोड़कर कोई बात करना उसको कहते यथा तथानुपूर्वी. उसके बाद नाम के हमने 10 प्रकार देखे थे, उसमें भी गौण्य नाम यानी गुण के आधार से, नौगौण्य नाम, आदान नाम, फिर प्रतिपक्ष नाम, फिर अनादि सिद्धांत नाम, प्राधान्य नाम, आगे कौन सा है,
नाम पद,
हाँ नाम पद, प्रमाण पद, अवयव पद और संयोग पद. हाँ वो प्रतिपक्ष बता दिया, आदान के बाद प्रतिपक्ष आता है. इस तरह हमने नाम के 10 प्रकार देखे थे. प्रमाण में हमने देखे थे 5 बताए ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और नय, या 6 प्रकार भी देखे थे. नाम यानी नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण, ये 6 भेद भी हमने देखे थे ये प्रमाण के. वक्तव्यता में क्या लिया था हमने, स्वसमय वक्तव्यता, परसमय वक्तव्यता और दोनों की तदुर्भय, दोनों की वक्तव्यता यानी स्वस्वरूप का कथन करेंगे, स्व समय का, पर समय यानी मिथ्यात्व संबंधी भी कथन करेंगे और वो पर समय कैसा झूठा है उसका खंडन करेंगे, उसका वर्णन करेंगे. तो ये वक्तव्यता भी हमने देखी थी. उसके बाद जो अर्थाधिकार है 83 पेज पर, उसमें भी प्रमाण, प्रमेय और तदुभय. तो यहाँ जीवस्थानी ग्रंथों की रचना, ग्रंथ की रचना हो रही है, तो ये प्रमेय है, प्रमेय ने गेय है. प्रमेयत्व गुण मालूम है ना हमें, दूसरे के ज्ञान में झलकना, तो ये हमारा जानने का जो विषय है, ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं और ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं. तो इस जीवस्थान शास्त्र में एक प्रमेय अर्थाधिकार का ही वर्णन है, लिखा ना आगे, इसमें प्रमाण के विषयभूत प्रमेय का ही वर्णन किया गया है, यानी जो ज्ञान में जो कुछ जाना जाता है उसका यहाँ वर्णन है. ये उपक्रम अभी यहाँ शुरू बंद यानी कंप्लीट हुआ. उपक्रम की बात यानी ग्रंथ का अवतार होता है उसमें उपक्रम की चर्चा हमने की. आगे वाले पॉइंट्स कौन से है, उपक्रम, फिर निक्षेप, फिर नय और फिर अनुगम. तो उसमें से अभी निक्षेप के पॉइंट पर हम आए हैं 84 पेज पर. तो निक्षेप में हमने देखा था कि 6 प्रकार के निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव. कहीं कहीं 4 ही निक्षेप बताए जाते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव. निक्षेप की भी हम रिवीजन करें करते हैं तो उसका नाम कह देना। अब यहाँ जीव स्थान ऊपर निक्षेप लगाना है। पहले हमने मंगल पर निक्षेप लगाए थे तो कैसा कहता, मंगल यह नाम रखना, उसको कहते हैं नाम मंगल। वैसे जीव स्थान यह नाम रखा तो उसको कहेंगे नाम जीव स्थान। ख्याल है? अब स्थापना जीव स्थान, इसमें हमने जीव स्थान है ऐसी स्थापना कर दी तो वो स्थापना जीव स्थान होगा। तो उसमें भी दो प्रकार है, एक सद्भाव स्थापना और एक असद्भाव स्थापना। तदाकार यानी उसी आकार के उसमें स्थापना करना उसको कहते हैं तदाकार या सद्भाव स्थापना, और अदाकार में स्थापना करना उसको कहते हैं असद्भाव स्थापना। उसके आगे जीव स्थान लगा देना यानी सद्भाव स्थापना, सद्भाव स्थापना जीव स्थान, इस तरह। तो नाम स्थापना हो गए। अब द्रव्य स्थापना में क्या, यानी द्रव्य निक्षेप में क्या लेना है, जिसको हम द्रव्य जीव स्थान कहेंगे। तो द्रव्य जीव स्थान में दो भेद, आगम और नो आगम। ये बातें हमेशा चलेगी। अभी ये छः छः पॉइंट्स, जो कोई नया विषय होगा तो उसमें छः पॉइंट्स लगेंगे। तो द्रव्य जीव स्थान पर उसमें दो प्रकार, आगम द्रव्य जीव स्थान। ख्याल है? जरा अटपटा लगेगा आपको। जीव स्थान के निक्षेप छः बताए बिना, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, नाम जीवस्थान यानी उसका नाम रखना जीवस्थान, स्थापना जीवस्थान यानी जीवस्थान की स्थापना करना उसमें ग्रंथ में। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा, हाँ, द्रव्य जीवस्थान। अब द्रव्य जीवस्थान के दो मेन डिविजन्स है, आगम और नो आगम। तो यहाँ आगम तो हम तो अभी तक तो हमें शास्त्र को आगम कहते हैं मालूम था, अब यहाँ किसको आगम कहेंगे, वो शास्त्र जानने वाले जीव को यहाँ आगम कहे। निश्चय से क्योंकि ये ज्ञान रूप उस वहाँ परिणमन हुआ है। जीव समझो, हम पेन संबंधी हमने कोई शास्त्र पढ़ा अभी फॉर एग्जांपल में, तो जीव ने जाना उसको, तो वो जो ज्ञान है वही आगम है। तो द्रव्य निक्षेप में पहले मेन दो भेद करना, आगम और नो आगम। यानी ये जो द्रव्य जीव स्थान है उसके आगम द्रव्य जीव स्थान और नो आगम द्रव्य जीव स्थान, ये दो भेद हो गए। अभी आगम द्रव्य जीव स्थान में हम कितने भेद करेंगे, याद है? ये निश्चय और व्यवहार, यानी जो जीव को हम आगम कहते हैं वो निश्चय है, और जो शास्त्र द्रव्य श्रुत है या वाणी है उसको भी हम कह देते हैं आगम, तो ये व्यवहार है। फिर नो आगम में अभी बात करेंगे। नो आगम के तीन डिविजन्स, अभी इसमें शरीर को भी नो आगम कहेंगे। कौन सा शरीर? जो शास्त्र का जानकार जीव है। अब यहाँ द्रव्य निक्षेप की बात है इसलिए वर्तमान उपयोग से रहित ही जीव लेना, आगम हो या नो आगम हो, शास्त्र का जानने वाला है, अभी ज्ञाता है, परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग उसका नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञायक शरीर में किसको लेना, तो जानने वाले जीव का शरीर। भावी में, वर्तमान में वो जानने वाला नहीं है जीव, परंतु भविष्य काल में इसी भव में आगे चलकर या आगामी भव में वो जानेगा, इसलिए उसको कहा भावी नो आगम द्रव्य जीव स्थान। ये पूरा ऊपर की गाड़ी उसके पीछे सब बोल देना। अब उसके बाद तद व्यतिरिक्त, ये दोनों ही नहीं, वहां कहीं कर्म नो कर्म आदि अन्य भी बातें बताई जाती है। हाँ, तद व्यतिरिक्त मंगल में क्या कर्म नो कर्म पर लगाया था, उसमें लौकिक और लोकोत्तर वगैरह लिया था। तद व्यतिरिक्त ने इनके अलावा और जो कुछ है जहाँ यथा योग्य वो बताया जाएगा, यानी ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त यानी दोनों के अलावा और जो कुछ होगा उसको बताएंगे। यहाँ जो जीव स्थान का शास्त्र है उसको तो तद व्यतिरिक्त में लिया। हाँ, अब ज्ञायक शरीर में हमने फिर तीन भेद किए थे। शरीर की बात चल रही ना, जानने वाले जीव का शरीर, तो जो पूर्व भव का छोड़कर आया है उसको भी लेंगे, वर्तमान का या भविष्य में जो धारण करेगा अगले भव में उसको भी लेना। तो पहले जो छोड़कर आया है वो आयु पूरी हुई इसलिए छूटा तो उसको च्युत कहते हैं, कदली घात से मरण होता है तो उसको चावित कहते हैं, और फिर जो समाधि में यानी संलेखना पूर्वक मरण करता है समाधि मरण तो उसको त्यक्त कहते हैं। उसमें उसके समाधि के प्रकार बताया जाता है, प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान। उसमें भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट वो भक्त प्रत्याख्यान के भेद है। इस तरह से ये 6 निक्षेप होते हैं। अब यहाँ हम जीव स्थान पर द्रव्य निक्षेप लगा रहे हैं। द्रव्य निक्षेप का और भाव निक्षेप में क्या अंतर है? द्रव्य निक्षेप में वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूत या भविष्य के पर्याय वाला जीव लेना, और भाव निक्षेप में वर्तमान पर्याय से युक्त जीव लेना। ये 2 निक्षेपों में अंतर है। तो अभी हम यहाँ तक आए, देखो नाम जीव स्थान, स्थापना जीव स्थान, फिर हाँ वो जीव जानने वाले जीव को आगम द्रव्य जीव स्थान कहेंगे, ज्ञायक शरीर भावी और तद्व्यतिरिक्त में वो 9 आगम के भेद होंगे उसके। और यहाँ तो ये तद व्यतिरिक्त किसको कहा, इनके 2 के अलावा तो आकाश द्रव्य को, आकाश के जिन प्रदेशों में ये शास्त्र रखा है उन आकाश के प्रदेशों को तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य जीव स्थान कहा था। इनके अलावा इसी बात है ना, जीव भी नहीं शरीर भी नहीं लिया तो इनके अलावा और क्या है उसकी बात की यहाँ। अब भाव जीव स्थान भी 2 प्रकार का, उसमें भी आगम भाव जीव स्थान और नो आगम भाव जीव स्थान। अभी आगम भाव जीव स्थान में जानने वाला और वर्तमान उपयोग सहित वाला लेना आगम भाव जीव स्थान में, और नो आगम भाव जीव स्थान में मिथ्या दृष्टि 14 जीव समासों का जो वर्णन वगैरह होगा, यानी अभी जो हमारे शास्त्र यहाँ जीव स्थान शास्त्र की रचना हो रही है वो नो आगम भाव नो आगम भाव जीव स्थान होगा। ये निक्षेप का वर्णन हमने, ये हमारी कल की रिवीजन चल रही। फिर हम नयोम पर आए 84 पेज पर। पहले में पहले नए क्यों बताए जाते हैं और नए का अर्थ क्या है, तो नए के बिना लोक व्यवहार नहीं चलता, क्योंकि जो हम जो बोलते हैं वो नयों में ही बोलते हैं। हमें पता नहीं कि इसको नए कहते हैं, हमें पता नहीं कि ये उसका अर्थ हमें भाषित होता है, परंतु अगर हम वो नयों की भाषा में उसको डिफाइन करेंगे, उसकी परिभाषा करेंगे, तो हमें वो बहुत अटपटा लगता है। परंतु जब हम लौकिक रोज की हमारे रूटीन लाइफ में हम तो नयों का तो वापर तो हमारा होता ही है, है ना? तो उसका वर्णन क्या है, नए कहना किसको, तो प्रमाण से गृहित वस्तु को, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में, प्रमाण यानी सभी जो वस्तु के धर्म है उसको जानकर, फिर उसके एक एक धर्म को मुख्य करके जो कथन करेगा या जो जानेगा उसको नए कहेंगे। क्या लिखा है यहाँ देखो 84 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के, ग्रहण की हुई यानी जानी हुई वस्तु के, जब जब ग्रहण शब्द आता है तब वो जानने के अर्थ में आता है। ग्रहण करो यानी जानो, और छोड़ो यानी मत जानो, ख्याल है ना, समय सार में भी आता है। शुद्धात्मा को ग्रहण करो और राग द्वेष को छोड़ो, क्योंकि वहां लिखा है शास्त्र में राग द्वेष को छोड़ो, तो हम पहला प्रयत्न क्या करते, चलो राग द्वेष को छोड़ देंगे। परंतु जब शुद्धात्मा में हम ज्ञान को एकाग्र करते हैं तो राग को हमने छोड़ा है ना, क्या उसके तरफ का लक्ष्य छोड़ा। ये ग्रहण और छोड़ना जो है वो ज्ञान द्वारा करना है, और हम क्या करना चाहते हैं, राग द्वेष को कम करना है, तो हम देखते हैं राग द्वेष की तरफ ही, कम हुआ कि नहीं, कम हुआ कि नहीं, कम हुआ कि नहीं, तो हमारा लक्ष्य राग द्वेष की तरफ है, तो वो राग द्वेष 3 काल में कम नहीं होने वाले, ख्याल है ना। ये ग्रहण त्याग ज्ञान के द्वारा, ग्रहण और ज्ञान के द्वारा त्याग या छोड़ना होता है। तो प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय, उस एक अंश में पूरी वस्तु डाल देना। ये तो हमारा उदाहरण तो मालूम है सबको, सीता अब जब हम जानकी कहेंगे तो जनक की अपेक्षा वो पुत्री है, तो सीता में तो बहुत सारे एंगल है, वो माँ भी है किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, फिर भी हमने वो जो पुत्री वाला अंश है वो पूरे सीता को वो पुत्री वाली नज़र से यानी 100% पुत्री दिख रही है। जनक की दृष्टि से देखेंगे तो 100% वो, यानी ऐसा नहीं कि सीता का एक अंश दिख रहा है उसको, पूरी सीता उस अंश रूप से दिख रही है। ख्याल है अंश का अर्थ होता है, नहीं तो हमें इतनी वस्तु है और उसके एक अंश को जाना, ऐसा नहीं है। पूरी वस्तु उस एक धर्म रूप से एक अंश रूप से दिख रही है। अब यहां देखेंगे ये नए दो मुख्य द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक यानी द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, जिसको जानने का या कहने का द्रव्य प्रयोजन है, वहां पर्यायों की चर्चा नहीं करेंगे, भेदों की चर्चा नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक। और पर्यायार्थिक यानी कि पर यानी भेद, जहां भेदों की चर्चा होगी, भेदों की मुख्यता से जहां कथन किया जाएगा, तो वहां हम कहेंगे ये पर्यायार्थिक नए का कथन है। परंतु इनको नए कह रहे हैं यानी द्रव्य यानी अभेद अखंड भी और भेद भी, दोनों को मिलकर जो जानेगा उसको हम प्रमाण ज्ञान कहेंगे। यानी जिसने सबसे पहले वस्तु के भेद और अभेद स्वरूप को जान लिया है और बाद में किसी एक को मुख्य करके कथन करते हैं, तब हम उसको कहते हैं ये नए का कथन है। यानी नए के कथन में उसके जो दूसरे वस्तु के गुणधर्म है या उसके जो कुछ अलग एंगल्स है उसका हमें स्वीकार है, उसको कहते हैं सापेक्ष होते, नए सापेक्ष होते। यदि सर्वथा मान लेंगे नहीं 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 वो सीता वो है 100% पुत्री ही है, उसमें अन्य कुछ है ही नहीं, तो ये गलत साबित हो जाएगा, तो उसको कहते हैं निरपेक्ष नए, जो नए ही नहीं है, नया भास है, वो मिथ्या होते हैं। यानी वस्तु के अन्य धर्मों का स्वीकार करते हुए किसी एक धर्म की मुख्यता से बात करना या जानना, उसको हम नए कहते हैं। जब द्रव्यार्थिक नए हम कहते हैं तो वहां पर्याय है, पर उसका भेदों का लक्ष्य हमने छोड़ दिया है, अखंड द्रव्य को हमने ध्यान में लिया है, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक। अभी द्रव्य तो है, पर्याय द्रव्य बिना नहीं होती, परंतु उसी द्रव्य को हम पर्याय रूप से भेद रूप से उसको देख रहे, उसको जान रहे, तो वही होगा पर्यायार्थिक नए। ये दो मेन भेद है उसमें, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अभी हमने जो सात नए सुने हैं या जाने हैं उसको हम इन दो में डालेंगे। सात के नाम ही है, याद है? हाँ बोलो अश्विन भाई। अच्छा आपको मालूम है नई गम नए? हाँ कौन से? हाँ देखिए, पहले में पहला नैगम नय, फिर संग्रह नय और व्यवहार नय, ये तीन तो द्रव्यार्थिक नय है। अभी हर एक की हम चर्चा करेंगे किसका क्या काम है। और पर्यायार्थिक नय चार है, उसमें पहला है रुजु सूत्र नय, फिर शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये दो मेन डिविजन्स हो गए। अब इसमें से ये नैगम संग्रह और व्यवहार किसको कहना, तो नैगम ने क्या क्या बताता है, ये तो संग्रह ने और व्यवहार ने से ग्रहण की हुई वस्तु दोनों को ही स्वीकार करने वाला तो नैगम है ही है, परंतु वो और क्या करता है कि जो संकल्प हमने यानी किसी कार्य का आरंभ किया, हमने संकल्प किया हम ये करने जा रहे हैं, अभी वो कार्य पूरा होने में बहुत टाइम है, फिर भी हम कह देंगे कि ये हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसको हम नैगम नय यानी उसको कहते हैं संकल्प ग्राही, संकल्प को भी स्वीकार कर लेता। जैसे कोई आदमी वन में जा रहा है लकड़ी तोड़ने के लिए, काटने के लिए, क्यों? क्योंकि वो लकड़ी काट कर उसमें से वो प्रस्थ नाम का ऐसा पहले माप आता था, अनाज धान मापने का मापटे वगैरह हम कहते ना ऐसा कुछ मापटे पायली का ऐसा माप आता था पहले इतना, तो वो बनाने वाला है। वो अभी क्या कहाँ जा रहा है, जंगल में जा रहा है, अभी लकड़ी काटी भी नहीं है, तो किसी ने पूछा तो क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है, तो मैं प्रस्थ लाने जा रहा हूँ। उसने संकल्प किया है कि मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी काटूंगा, उसमें से ये प्रस्थ बनाऊंगा, तो तो उसको कहते ये नैगम नय है, नैगम नय से वो ऐसा कह सकता है, और हम कहते भी है लौकिक में। अभी घर के अंदर ही है, चप्पल डाल रहे और कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो जो कुछ हम काम करने जा रहे हैं वो काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ वर्तमान में हम बताएंगे उसको, वो होने वाला तो भविष्य में है। उसको ऐसा भी कहते जो नहीं हुआ है अनिष्पने ने, जो भूतकाल में हो चुका है या जो भविष्यकाल में होगा उसको हमने वर्तमान में ही संकल्प कर लेते हैं, उसको कहते हैं नैगम नय। भूतकाल में हो चुका वो कैसा है, जैसे श्रेणिक राजा, वो तो भूतकाल में हो चुका महावीर के टाइम, और अभी वर्तमान में वो कहाँ है, नरक में है, नारकी जीव है, पहले नरक का नारकी है, हम उसको अभी क्या कहते हैं, श्रेणिक राजा। तो ये कहते भूत नैगम नय से हम उसको कह सकते हैं, कहने में कोई कौन से नय से कौन बात हो रही है ये अगर हम ध्यान में लेते हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये भूत नैगम नय। अभी कोई युवराज है या कोई मेडिकल स्टूडेंट है, अभी एडमिशन ही लिए, तो उसको डॉक्टर कहना ये होता है उसका नैगम नय, यानी उसको आगे वाली पर्याय को अभी उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये नैगम नय की बात हुई। अब संग्रह नय और व्यवहार नय, ये दोनों की जोड़ी है। कैसे संग्रह नय, तो अनेक अनेक पदार्थों को जिनमें समान धर्म है, कोई एक समान धर्म, उस समान धर्म की अपेक्षा अनेक पदार्थों को इकट्ठा कंसीडर करता है, उसको हम कहेंगे संग्रह नय। समानता के आधार पर पूरे इकट्ठा कर देना वस्तुओं को, उसको संग्रह नय कहते हैं। और व्यवहार नय, उसी संग्रहित वस्तुओं में जो असमानता है उसके आधार पर उसके भेद करना, यानी व्यवहार नय का प्रयोजन भेद करना और संग्रह नय का प्रयोजन इकट्ठा करना। जैसे हमने सत कह दिया, सत मात्र कहने से कितनी कितने पदार्थ उसमें आएंगे, सभी सभी द्रव्य उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि सत यानी सत्ता, ये जो लक्षण है उस लक्षण के द्वारा इस विश्व में जो कुछ है उस सभी को हमने कंसिडर किया, यानी उसमें ये जीव है, पुद्गल है, ये हमारी नजर नहीं, उसके नजर में क्या है, सत। तो सत कहने से सभी पदार्थ आते हैं, तो ये संग्रह नय है। अब वहीं पर अगर व्यवहार नहीं लगता है तो ये सत में ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये धर्म अधर्म आकाश काल है, उसने डिवीजन की, सत में डिवीजन की, तो उसको हम कहेंगे यह व्यवहार नय है। उसके आगे आगे जो अगला वाला संग्रह नय, वो क्या करेगा, सभी जीव एक जीव कहेंगे, एक जीव ने एक सिंगल पर्सन नहीं लेना वा, एक जीव जाति, यानी सभी जीवों को, ये उपयोग मय ऐसा जीव है ऐसा कहेंगे, तो सभी जीव इकट्ठे उसने कंसीडर की। हम कहते हैं जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, उसमें एक जाति कौन सी है, जीव जाति, एक जाति पुद्गल जाति, तो जीव जाति पूरी उसने इकट्ठा कर दी, उसको कहेंगे हम संग्रह ने। और अभी उसमें ये मुक्त है, ये संसारी है, ये होगा व्यवहार ने, यानी व्यवहार ने भेद करते जाएगा और संग्रह ने इकट्ठा करेगा, यानी सभी चीजों में किसी समानता के आधार पर उनको इकट्ठा बताना, वो हो गया संग्रह ने, और उनमें कोई विशेषताएं उसके आधार पर उसके भेद करना उसका काम है, उसको कहते हैं व्यवहार ने। संग्रह ने और व्यवहार ने दोनों ही द्वारा हमको वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है। सभी पदार्थ द्रव्य है, सत है, परंतु ऐसे कौन कौन से अलग अलग है, तो उसकी भी हमें ख्याल आता है। तो ऐसे आखिर के पॉइंट तक उसकी डिवीजन चलती जाएगी। हमने शुरू किया था सत से, फिर ये छह पदार्थ अलग अलग बताए, जीवादि छह द्रव्य, फिर उसमें भी ये मुक्त है, ये संसारी, फिर संसारी में भी, और उसमें और उसके पेटाभेद, पेटाभेद जो सब डिविजन्स, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तो उसमें भी देव है, नारकीय, मनुष्य और संगी, पंचेंद्रिय तीन इंच, असंगी, पंचेंद्रिय तीन इंच, इसमें इतने सारे भेद चलते जाएंगे। ये संग्रह ने और व्यवहार ने का, परंतु इसमें मूल बात क्या है, ये द्रव्यार्थिक नय होने के कारण ये कौन सी पर्याय चल रही है उसकी चर्चा नहीं है। ये तीन ख्याल में आए, नैगम यानी संकल्प ग्राही करते, जो हमने कार्य करने की ठान ली है उसको वर्तमान में वो कार्य कर रहा हूं ऐसा कहना। जैसे अभी हमने चावल निकाले और अभी धो रहे, तो क्या कर रहे हैं, मैं भात पका रहा हूँ, भात पकने की क्रिया तो बाद में होगी, जब पक के तैयार हो जाएगा तब उसको हम भात कहेंगे, परंतु अभी हमने मैं भात बना रही हूँ, माँ भात पका रही हूँ ऐसे कहना, उसको कहते हैं नैगम नय। यानी भूतकाल में या भविष्यकाल में होने वाली जो चीजें है या जो हो चुकी है जो होने वाली है उसको वर्तमान में अभी है ऐसा कहना, इसको कहते हैं निगम ने।
हाँ,
पद्मनाभ तो होने वाले है, वो हमारे भविष्य के तीर्थंकर है ऐसा कहना। वे हमारे हमारे प्रथम आगामी प्रथम तीर्थंकर है कहना। हाँ, भावी निगम ने। हाँ, अभी उनको राजा सैनिक अभी नरक में है ऐसा कहना भूत निगम नहीं होगा। हाँ, वर्तमान निगम नहीं में क्या होता है कि जो पर्याय अभी थोड़े ही काल में समाप्त होने वाली है उसको वर्तमान निगम नहीं कहते। जैसे भी पूरी हुई नहीं, ये प्रस्थ का जो उदाहरण लिया था, अभी तो जंगल जाएगा वहाँ लकड़ी काटेगा वो लाएगा उसमें से प्रस्थ बनाएगा आदि, ये तो बहुत दूर की उसने बताई, उसको भावी में डालो। हाँ, अभी चाय बना रही हूँ, अभी तो आपने पानी निकाला, अभी चूल्हा भी जने, तो ये तो इमीडिएट होने वाली क्रिया है, तो उसको हम वर्तमान निगम में ले सकते हैं। ये बात आएगी अभी आगे। हाँ, निगम ने वगैरह की बात थोड़ा हम यहाँ डिवीजन कर रहे हैं, नहीं अभी तो कल थोड़ा जरा हार्ड हुआ, निगम तो इसमें नहीं आई है। हाँ, ये तो निगम की चर्चा नहीं है, तो वो क्या है हमें ऐसा होता है ना, जो नहीं है उसकी जरा कुतूहल होता है कि जाना तो सही क्या है, वो चर्चा तो उसकी भी इसमें आएगी आगे चलकर। हाँ, अब हम पर्यायार्थिक की बात करेंगे। पर्यायार्थिक में वर्तमान काल को विषय, वर्तमान काल युक्त द्रव्य है तो पर्याय को लेना है, वर्तमान पर्याय वाला, तो वर्तमान पर्याय को बताने वाला जो है उसको हम कहेंगे रुजु सूत्र, यानी यह पर्यायार्थिक नहीं कहेंगे, पर्यायार्थिक हम पहले जनरल बात करेंगे। वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को बताएगा तो उसको हम पर्यायार्थिक नहीं कहते, वहाँ भेद की बात की ना, वर्तमान पर्याय को अलग निकाला द्रव्य से, द्रव्य से होता नहीं अलग, उस अपेक्षा से हम द्रव्य को देख रहे हैं। तो उसमें मेन दो भेद है, उसमें से एक है उसको कहेंगे अर्थ नय, पदार्थ को वो विषय करता है। किसके भेद चल रहे है? पर्यायार्थिक नय के भेद चल रहे हैं, तो उसमें एक अर्थ नय होगा और दूसरे का नाम हम व्यंजन नय कहेंगे। व्यंजन का अर्थ होता है शब्द, अर्थ है यानी पदार्थ, व्यंजन या शब्द कहो तो ये पदार्थ को बताने वाला जो शब्द है उसको व्यंजन कहते हैं, यानी वो शब्द सुनकर हमको पदार्थ का ज्ञान होता है, वाचक है वो। तो उसमें क्या है, ये अर्थ नय है यानी वर्तमान पर्याय से युक्त वाला ये द्रव्य यहाँ लेना, इसको हम, इसका नाम है रुजु सूत्र नय। अर्थ नय यह है रुजु सूत्र नय। रुजु सूत्र नय में हमने देखा था वर्तमान समय वाली पर्याय को बताने वाला, तो वो पर्याय एक समय की भी होगी जिसको हम सूक्ष्म रुजु सूत्र नय कहते हैं, और लंबे समय की भी होगी जिसको हम व्यंजन पर्याय कहते ना, मनुष्य भाव, बहुत काल तक चलने वाला ये मनुष्य भाव, या हमारे वर्तमान चौबीसी, या हमारा वर्तमान हुंडा सर्पिणी काल है, तो ये वर्तमान को बताने वाले अलग अलग वचन होंगे, तो वो सभी रुजु सूत्र नय के विषय है। ख्याल है? हाँ, देखो रुजु सूत्र, रुजु यानी सीधा, अभी वर्तमान को जो बता रहे वर्तमान पर्याय बता रहे, तो वर्तमान पर्याय एक छोटी छोटी यानी सूक्ष्म जिसको हम पर्याय कहते हैं, एक एक समय की होती है, पर्याय एक समय की होती है, तो ये या तो एक समय के पर्याय को बताएगा, या जब हम लौकिक में जब हम कहते हैं ये हमारा वर्तमान है, वर्तमान काल चल रहा है, तो ये मेरा वर्तमान में मनुष्य भाव चल रहा है, मनुष्य भाव को वर्तमान कहा, तो ये कितना है, तो मेरे जन्म से मरण तक का ये मेरा वर्तमान हमने बता दिया यह बराबर, तो उस अपेक्षा वह लंबे काल को भी वर्तमान में गिना दिया हमने, तो यह एक समय वाला होगा या अनेक समयों वाला होगा, क्योंकि भविष्य में हमारा देव पर्याय हो गया ऐसा हम कहेंगे, तो यह हमारी वर्तमान हमारा लंबा चल रहा है। कोई देव होगा तो क्या कहेंगे, सर्वार सिद्धि वाले देव, ये 33 सागर को वो वर्तमान कहेंगे, ये मेरा वर्तमान बहुत चल रहा है। वो बताएंगे ना, अर्थ नय पदार्थ को विषय करता है, पदार्थ को यानी अभी वर्तमान में जो मिथ्या दृष्टि है वो उस पर्याय के द्वारा हमने द्रव्य को पहचाना। पदार्थ को डायरेक्ट विषय करता है ये नहीं, और व्यंजन ने क्या है शब्दों को विषय करके उस द्वारा पर्याय का ज्ञान करता है। यानी इसका लेना देना किससे, उस शब्द आप कौन से यूज कर रहे हैं उसके, ये तो पदार्थ को ही डायरेक्ट विषय किया। और इसने क्या किया, अभी कोई इंद्र है तो इसने इंद्र कहा, वर्तमान में जो इंद्र है उसने इसने इंद्र कहा, वो कह सकता है इस वो पुरंदर है, इंद्र है, शक्र है, या शचीपति है यानी शची का पति शचीपति है, या देव का क्या कहते हैं उसमें देवेंद्र या ऐसा कुछ हा? तो ये अलग अलग नाम है तो ये उसको स्वीकार करता है। अब ये जो अलग अलग नाम हमने उसके स्वीकार किए तो अभी आगे वाले जो है शब्दन है तो वो क्या करेंगे, ये आपने जो शब्द यूटिलाइज किए हैं क्या वो सही है कि उसमें कोई दोष है, दोष है ने ग्रामेटिकली उसमें व्याकरण अपेक्षा क्या दोनों का वचन सेम है, दोनों का लिंग सेम है, दोनों का जो प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष होता है क्या वो अच्छा सही है, हाँ उसके संख्या भी है, ऐसी ये सब बातें आएगी टोटल, इसकी हम चर्चा करने वाले। यदि उसमें दोष होता है तो ये स्वीकार नहीं करेगा। यानी लिंग में भी लिंग यानी कैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग ऐसे शब्द होते हैं तो एक साथ कोई स्त्रीलिंग वाला और कोई नपुंसक लिंग वाला ऐसा नहीं चलेगा। जैसे ज्ञान ही विद्या है ऐसा हम कहेंगे तो ज्ञान तो मराठी में हम कहते ते ज्ञान, और विद्या तो स्त्रीलिंग में ती विद्या, तो ये एक साथ नहीं वो स्वीकार नहीं करेगा, वो कहता है ये शब्द नहीं को। इसके तीन वेद, एक शब्द, एक समभिरूढ़ और एवं भूत। अब जिसमें जिसमें ये लिंग का अलग अलग लिंग एक साथ किए हैं तो वे शब्द वो स्वीकार नहीं करेगा, संख्या की अपेक्षा अलग अलग है स्वीकार नहीं करेगा। कोई विभक्ति जहाँ सप्तमी लगानी है वहाँ कहीं कहीं द्वितीय लगती है संस्कृत में, ये संस्कृत अपेक्षा सब ये है व्याकरण, इसमें हमें ज़्यादा अपने उदाहरण नहीं मिलेंगे। तो संख्या में भी जैसे हम क्या कहते बहुत सारे आम के झाड़ है तो उसको हम कहें ये वन है, आमराहा वनम यानी ये सभी आम के पेड़ वन है ऐसा कहना तो आमराहा यानी बहुत सारे आम के वृक्ष हुए और वन ये एक वचनी हो गया तो संख्या उसकी ज्यादा है और इसकी एक है तो ऐसा संख्या की अपेक्षा उसमें दोष आए उसको व्यभिचार कहते, दोष को व्यभिचार कहते तो ये संख्या व्यभिचार होगा। ऐसे जो दोष है उन शब्दों को ये स्वीकार नहीं करता। इसने तो सभी को स्वीकार किया था, इसको बताने के लिए हमने बहुत सारे शब्द यूज किए थे, अब ये चालनी लगेगी उस शब्दों में से कुछ कुछ चुन चुन कर ये स्वीकार करेगा बाकी को नहीं स्वीकारेगा, आगे आगे फिल्टर लगेंगे। तो शब्द ने जिसको स्वीकार किया उसने कह दिया कि हाँ ये ठीक है चलेगा हमको, आगे वाला समभिरूढ़ कहता है कि एकार्थवाची कोई नाम नहीं हो सकते, यानी एक ही चीज को बताने वाले अन्य अन्य नाम आप नहीं यूज कर सकते। जैसे इसने तो इंद्र पुरंदर और शक्र उसको तो स्वीकार कर लिया, परंतु अगले वाला कहेगा ये एकार्थवाची शब्द नहीं हो सकते, इंद्र कहेंगे तो ऐश्वर्य को भोगने वाला उसी को इंद्र कहना है, उसका अर्थ अलग होता है, पुरंदर कहेंगे तो पुरक को विभाजन करने वाला उसके विभाग करने वाला उसी को हम पुरंदर कहेंगे, यानी अर्थ को बताने वाला तो उसमें भी अलग अलग अर्थ में स्वीकार करते हैं एक अर्थ में नहीं। उसमें ऐसी भी बात आती है जैसे गो शब्द है, गो यानी गाय, गो शब्द के अलग अलग 11 अर्थ होते हैं एक ही शब्द के अलग अलग, परंतु रूढ़ी में कौन सा है गो यानी गाय, तो ये गाय शब्द को यानी इसके अनेक अर्थ होते हुए भी इस किसी जो रूढ़िगत जो अर्थ है उसी एक को ही स्वीकार करेगा तो उसको भी वो समभिरूढ़ नहीं कहते। हम तो अभी इतना ही याद रखेंगे, रुजु सूत्र ने तो अनेक सभी शब्दों को स्वीकार किया, उस शब्दों में से इसने वो लिंग संख्या आदि उसमें जो दोष आता है उसको टालकर जो शब्द है उसको स्वीकार किया। एक ही वस्तु को बताने वाले अनेक शब्दों को स्वीकार किया। ये कहता है एक वस्तु को बताने वाला एक ही शब्द होगा, हम एट ए टाइम दो तीन चार एक अर्थवाची शब्द को स्वीकार नहीं करेंगे। या जो रूढ़िगत एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं वहाँ एक अर्थ को हम स्वीकार करेंगे, अनेक अर्थों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये समभिरूढ़ हुआ। एवं भूत उससे भी ज्यादा क्या कहते ना चौकसाई करता है ना। हाँ, तो उसने क्या किया, तो हम वही शब्द यूज करेंगे। अभी इंद्र क्या कर रहा है, ऐश्वर्य भोग रहा है, तो हम उसको इंद्र स्वीकार करेंगे ना। अभी वो क्या कहे, पुर की रचना विभाजन कर रहा है, तो ही हम उसको पुरंदर कहेंगे। ये इस तरह से जो जिस कार्य में उस प्रवृत्ति चल रही उस समय उसको उस नाम, वह नाम चलेगा, अन्य नाम नहीं चलेगा। यानी गाय को इसने तो गो शब्द का अर्थ गाय स्वीकार किया, तो गो का अर्थ होता है गमन करना, वो अंग्रेजी गो तो ये गमन करना, तो जब गाय गमन कर रही है तभी हम उसको गो कहेंगे, वो बैठी हुई गाय को गो नहीं कहेगा। ये अगला वाला चौकसाई कर रहा है ना,
चलती का नाम गाड़ी,
हाँ चलती का नाम गाड़ी, हाँ तब उसको गाड़ी कहेंगे। हाँ, ये हम इसमें से पढ़ेंगे अभी सभी। ये यानी ये तीनों ही शब्दों में कौन से शब्द योग्य है कि नहीं है, है तो ये रुजु सूत्र नए ने जिसको स्वीकार किया उसको ही बताने वाले जो शब्द है उसमें हम आगे आगे चौकसाई करते जाते हैं, उसमें शुद्ध शुद्ध कहेंगे या सूक्ष्म सूक्ष्म कहेंगे आगे आगे वाले। ये सभी पर्यायार्थिक नए ही है, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। परंतु यहाँ शब्दों की मुख्यता से, शब्द तो चीज को ही बताते हैं, परंतु वो जो चीज बता रहे हैं उसमें वो शब्द कैसे यूज किया उस पर हमारा ध्यान है। यानी वो पदार्थ के बताने वाले जो शब्द है उसमें से हम चुन चुन कर शब्द ले लेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, किसका देखो, रुजु सूत्र ने क्या स्वीकार किया। अभी हम जो इंद्र वगैरह की बात करें, इंद्र पुरंदर शक्र आदि बहुत सारे उसके नाम हैं, तो उसको स्वीकार कर दिया। शब्द नए में अभी उसमें से लगता नहीं है, वो जब हम पढ़ेंगे तो ख्याल आ जाएगा। उसमें अलग अलग उदाहरण दिए, तो जिसमें अलग अलग लिंग, अलग अलग संख्या, अलग अलग वचन को एक साथ यूटिलाइजेशन होता है, ऐसों को ये टाल देता है। उसके आगे जाते हैं तो हम कहें ना, एकार्थवाची अनेक शब्दों को इसने स्वीकार किया, ये नहीं एक अर्थ में एक ही शब्द आ गए, और रूढ़ी से जो चल रहा है उसको हम स्वीकार करेंगे। उसके आगे वाला एवं भूत जो है, एवं भूत का अर्थ है वर्तमान पर्याय से युक्त को उसी नाम से पुकारना, इसको दूसरा नाम नहीं चलेगा। गो शब्द हमने, इसने तो रूढ़िगत गो अर्थ, गो शब्द का अर्थ गाय ऐसा स्वीकार किया, परंतु गो शब्द गमन करने वाली उसको गाय कहा था, रूढ़ी से इसने उसको गाय कहा, तो ये भले बैठी हो सोई हो कह कुछ भी करती हो, परंतु एवं भूत ने क्या कहेगा, क्या अभी वो गमन कर रही है, तो ही हम उसको गो शब्द से कहेंगे। जैसे राजा है परंतु अभी पूजा कर रहा है तो हम उसको पुजारी कहेंगे। जिस कार्य में परिणत हो रहा है उस शब्द से उसको पुकारना, उसको कहते हैं एवं भूत में। अभी इसकी तो चर्चा अभी आई नहीं है, आएगी, ये तो अपनी रिवीजन चल रही है, शुरुआत अभी करना है कल के। देखो अब यहाँ 86 पेज पर आए हम, 86 को हम फिर पढ़ेंगे। देखो शंका क्या है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में भेद किस कारण से है। दो हमने मेन भेद देखे थे नयों के, तो रुजु सूत्र वचनों का विच्छेद जिस काल में होता है वह काल जिन नयों का मूल आधार है वे पर्यायार्थिक नय हैं, यानी जिसका आधार काल है। काल में वर्तमान काल लेना, वर्तमान काल से युक्त ही द्रव्य जिसका मूल आधार है, या वर्तमान काल जिसका मूल आधार है, वर्तमान पर्याय जिसका मूल आधार है, उसको रुजु से ये पर्यायार्थिक नय कहना। बराबर, अब ये शब्द तो अटपटे लग रहे, रुजु सूत्र वचन का विच्छेद। रुजु सूत्र तो पता चला, रुजु यानी सीधा, सूत्र यानी उसका प्रतिपादन करने वाला, सीधा यानी वो वर्तमान कालीन। तो वर्तमान काल हमारा हमने कहा था एक समय का होगा या बड़ा होगा, तो जहां तक उसकी लिमिट है उसके आगे तो उसका वो वचन तो वहां तक ही रहेगा, उसके आगे वो वर्तमान ये शब्द हम उसके लिए नहीं यूटिलाइज करेंगे। हमारा वर्तमान हमने मनुष्य भाव का 60 साल से पूर्व से लेकर अभी मानो और 30 साल आगे, इतने को हमने वर्तमान कहा, उसके आगे क्या होगा वो रुजु सूत्र वचन का विच्छेद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो रहेगा नहीं, ये उसका एंड लिमिट है उसकी, तो उसको हम वर्तमान रूप से स्वीकार करते हैं। तो पर्यायार्थिक नय का मूल आधार क्या है, तो ये वर्तमान काल उसका मूल आधार है, वर्तमान काल को उसने स्वीकार कर दिया। विच्छेद अथवा अंत जिस काल में होता है उस काल को विच्छेद कहते हैं, वर्तमान वचन को रुजु सूत्र वचन कहते हैं, यानी वर्तमान बताने वाला जो वचन है उसका नाम है रुजु सूत्र वचन, और उसके विच्छेद को रुजु सूत्र वचन विच्छेद कहते हैं। रुजु सूत्र के प्रतिपादक वचनों का विच्छेद रूप काल जिन नयों का मूल आधार है उन्हें पर्यायार्थिक नय कहते हैं। अपनी भाषा में वर्तमान पर्याय को बताने वाला जो नय है उसको हम रुजु सूत्र नय, पर्यायार्थिक नय। अर्थात रुजु सूत्र के प्रतिपादक वचनों के विच्छेद रूप काल से लेकर एक समय पर्यंत वस्तु की स्थिति का निश्चय करने वाले पर्यायार्थिक नय है। जब हम मनुष्य भव कहा, इस जीव का मनुष्य भव, तो जीव के मनुष्यपना की जो स्थिति कितनी हमने निश्चित की, जो कुछ हम 100 साल मान लेते हैं तो ये उसने उतनी स्थिति उसकी निश्चित कर ली, ख्याल है ना, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी स्थिति बता दी उन्होंने। या हम कहेंगे ये एक एक समय में पलटता है तो हम उसकी स्थिति बताएंगे एक समय की है, या कोई अंतर्मुहूर्त में पलटता है, जैसे कोई लेशा का भाव है अंतर्मुहूर्त तक रह के फिर पलटता है तो हम उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त बताएंगे। तो जहां जो योग्य है उसको समझना, तो ये वर्तमान को विषय करने वाला है, तो इसको कहते पर्यायार्थिक नय। इन पर्यायार्थिक नयों के अतिरिक्त शेष शुद्धाशुद्ध रूप द्रव्यार्थिक नय है। ये सभी जो पर्यायार्थिक नय अभी हमने देखे थे, रुजु सूत्र और आगे वाले शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, देखो अभी हमने जहां से पढ़ा था ना शंका, उसके ऊपर की एक लाइन है, अर्थनय और व्यंजन नय के भेद से पर्यायार्थिक नय दो प्रकार का है, जो हमने यहाँ बताया था अर्थनय और व्यंजन नय, इसको भी शब्द नय कहते हैं और इसकी एक डिवीजन उसको भी शब्द नय कहते हैं, इसलिए ने व्यंजन के ब्रैकेट में शब्द लिखा है, क्योंकि ये तीनों ही नय शब्द को विषय करते हैं मुख्यता से, शब्दों को उसमें वो बराबर है कि नहीं है उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ किसकी पर्यायार्थिक नय में अर्थ नय है वो रुजु सूत्र नय है, और जो शब्द नय है उसमें तीन भेद, या व्यंजन नय है उसमें तीन भेद, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, इनको छोड़कर क्या रह गया द्रव्यार्थिक नय है, तो उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक आदि, उसकी चर्चा भी हम करेंगे आगे जब भी उसका विषय आता है, यही उनमें भेद है। अब आगे उनमें से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय से भेद रूप और लिंग संख्या काल कारक पुरुष और उपग्रह के भेद से अभेद रूप केवल वर्तमान समयवर्ती वस्तु के निश्चय करने वाले नयों को अर्थ नय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल हमने पर्यायार्थिक के दो भेद देखे, अर्थ नय और व्यंजन नय, उसमें से अर्थ किसको कहना, कि जिसमें ये काल अपेक्षा संख्या अपेक्षा जो कुछ दोष लगते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे। इतने नाम लिए ना, लिंग संख्या काल कारक पुरुष उपग्रह, इसकी भी ये किसको कहते हैं उसकी बात आएगी, उदाहरण सहित आएगी। तो इनके जो भेद है उसको गौण कर दिया, उसमें जो कुछ व्याकरण दृष्टा वो सही है गलत है वो सबको इकट्ठा स्वीकार कर लिया। इनका क्या मूल, केवल उसका कंडीशन क्या है, केवल वर्तमान समयवर्ती वस्तु के निश्चय करने वाले नयों को। द्रव्यार्थिक नय में किसी पर्याय की बात नहीं की, वो वर्तमान का है क्या क्या है उसकी बात नहीं की। यहाँ क्या कह रहे, वर्तमान पर्याय को लिया है, वर्तमान समयवर्ती वस्तु ये इसका विषय है। इस नय को अर्थ नय कहते हैं। यहाँ पर शब्दों के भेद से अर्थ में भेद की विवक्षा नहीं है, यानी जो अर्थ है ने पदार्थ है, अलग शब्द यूज करने से वो पदार्थ में भेद नहीं करेंगे। आगे वाले जो शब्द है समभिरूढ़ है वगैरह, उसमें क्या है, समभिरूढ़ क्या कहेगा, तीन शब्द है इंद्र के लिए, परंतु ते एक वो जो व्यक्ति है उसमें तीन शब्द यूज करते हैं, तो तीन शब्द के यूटिलाइजेशन से उस व्यक्ति के तीन अलग अलग अर्थ निकालेंगे। एक ही अर्थ में, एक ही पदार्थ में तीन अलग अलग अर्थ स्थापित हो गए, क्योंकि बताने वाले शब्द अलग है तो उसकी अपेक्षा उस वस्तु में भी तीन अलग अलग उसके अर्थ होते हैं। ये चर्चा जब आएगी आगे दृष्टांत देकर तब ज्यादा क्लियर होगी। कल से तो आज थोड़ा कुछ ये होगा, ये तो बात ही ऐसी, अपने तो आदत है ना, पहले दिन वो बहुत कठिन लगता है, फिर क्योंकि हम इसको रिपीटेडली उसको देखते जाएंगे आगे। ते अर्थ नहीं, देखो यहाँ पर शब्दों के भेद से अर्थ में भेद की विवक्षा नहीं है, यानी कौन से शब्द है उसके भेद से जो पदार्थ है उसमें कोई भेद नहीं किया हमने, सभी शब्दों को स्वीकार कर दिया है। हाँ वो इंद्र पुरंदर जो उसकी जो वही अभी एग्जाम्पल भी आएगा, हाँ ये सभी को एक्सेप्ट करेगा। एकार्थवाची शब्द हो या अलग अलग उसके अर्थ हो, जैसे कृष्ण है तो उसके अलग अलग अर्थ होते ना, मुरारी है, गोवर्धन है, और वो क्या गिरिधर है, गिरिधर है, गिरिधर ने उंगली पर उसने वो पर्वत उठाया था वो गिरिधर, मुरलीधर, ये तो सब ये रुजुसूत्र ने तो सबको स्वीकार करेगा। आगे शब्द नए वाला वो क्या है, ये तो गोपी वल्लभ वगैरह वगैरह सब चीजें चलेगा। आगे आगे वाला उसमें फिर ये शब्द बराबर है कि नहीं उसकी चर्चा करेंगे। समभिरूढ़ नए तो कहेगा ये तो सब एक एक कृष्ण नहीं है, इतने अर्थ के अनेक कृष्ण है, ऐसा कहेगा। हर एक अर्थ के लिए वो अलग अलग उसके उसी वस्तु के अलग एंगल्स को बता रहे हैं, वो शब्द एक ही व्यक्ति के अलग अलग एंगल्स को बता रहे हैं कि इसने पर्वत को उठाया था इसलिए इसका नाम गिरिधर है, मुरली को पकड़ता है मुरली बजाता है इसलिए मुरलीधर है, आगे आगे। और एवं बुद्ध क्या कहेंगे, अभी वर्तमान में वो क्या कर रहा है, वो मुरली बजा रहा है तो मुरलीधर है, गोपियों के साथ अभी रास खेला है तो वो तो गोपी वल्लभ है, क्या है ना, तो वर्तमान में वो क्या कर रहा है उस नाम से वो पुकारेगा, दूसरे नाम उसको स्वीकार नहीं है। अब देखें यहाँ, देखो तीसरी लाइन में, व्यंजन यानी शब्द व्यंजन के भेद से वस्तु में भेद का निश्चय करने वाले, आई ना बात, अलग अलग शब्दों के द्वारा वो वस्तु में ही भेद किए जाते हैं, निश्चय करने वाले नए व्यंजन नए कहलाते हैं। यानी यह शब्दों की मुख्यता है, शब्दों की मुख्यता से उस वस्तु को ही हम भेद करना है ना, क्या अलग अलग एंगल से उसको देखना वस्तु को। इनमें रुजु सूत्र नय को अर्थ नय समझना चाहिए, उसके कोई भेद नहीं है, इतना ही हम स्थूल या सूक्ष्म ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रुजु यानी सरल अर्थात वर्तमान समयवर्ती पर्याय मात्र को जो सूत्र यति अर्थात सूचित करे उसे रुजु सूत्र नय कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वर्तमान पर्याय को सूचित करता है वो रुजु सूत्र नय है, ये शब्द कैसा तैयार हुआ ये हम ख्याल में लेते हैं तो उसका बराबर फिट हो जाता है अपने अर्थ। इस तरह वर्तमान पर्याय रूप से अर्थ को ग्रहण करने वाला, अर्थ यानी पदार्थ, तो वर्तमान पर्याय रूप से उस पर्याय को, ये पदार्थ को हमने ग्रहण किया है, जो वर्तमान पर्याय है उस रूप वो पदार्थ को हम देख रहे हैं। पदार्थ हमेशा किसी न किसी पर्याय रूप से विद्यमान होगा, तो ये हमारी अपनी योग्यता है कि हम उसको द्रव्य के रूप में देखें कि पर्याय के रूप में देखें। हम मुख्य गौण कर सकते हैं, पर्याय को हम उपेक्षा करके, पर्याय को गौण करके हम द्रव्य की बात करेंगे तो वो द्रव्यार्थिक हो जाएगा। अब यहाँ हमने पर्याय को मुख्य किया तो पूरा द्रव्य हम वर्तमान पर्याय रूप से देख रहे हैं तो उसको हम पर्यायार्थिक नहीं कहेंगे, बराबर। तो इस तरह वर्तमान पर्याय रूप से अर्थ को, अर्थ को यानी पदार्थ को ग्रहण करने वाला होने के कारण यह नए अर्थ नए है, यह बात सिद्ध हो जाती है। अब शंका, हाँ, द्रव्य नय कहाँ है? अर्थ है ने पदार्थ, द्रव्य, हाँ, हमने द्रव्य नय की चर्चा की क्या आज? आप द्रव्यार्थिक नय बताना चाहते हैं कि द्रव्य नय बताना चाह रहे? द्रव्य नय कौन से नय में आया था? द्रव्य नय कौन से नय की डिवीजन है? है द्रव्य ने आता है शास्त्र में, उन कौन से में आता है? ने आपने प्रश्न पूछा ना, द्रव्य कहते हैं, या तो आप द्रव्यार्थिक पूछना चाहते हैं क्या द्रव्य पूछना है? क्योंकि हमने द्रव्य ने नाम का कोई नए यहाँ नहीं देखा है। 47 नए में आता है द्रव्य ने, पर्याय ने, फिर अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, अस्तित्व न अवक्त्य, नास्तित्व न अवक्तव्य, अस्तित्व नास्तित्व, क्योंकि द्रव्य नाम दो बार आने वाला इसलिए मैं गिना रही हूँ। विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने और भाव ने, तो द्रव्य ने दो बार आया, द्रव्य ने पर्याय वाला वो द्रव्य ने, और फिर जाके नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, उसमें एक बार द्रव्य ने, दो बार द्रव्य ने आया, उस दोनों का अर्थ अलग है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, क्योंकि हमने द्रव्य नय नाम का नाम ही नहीं यहाँ लिया है। हमने तो 7 नयों का ही नाम लिया है, मुख्य तो दो ही डिवीजन देखे थे, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। या आपको द्रव्यार्थिक पूछना है तो पूछिए, हाँ, अर्थ है ने पदार्थ द्रव्य है, मगर जब हम द्रव्य नय कहेंगे तो उसका एग्जैक्ट कोई मीनिंग है शास्त्र में, हमें ऐसे ही शब्द यूज करना चाहिए, वापरना चाहिए कि जो शास्त्र में उसका कोई अलग अर्थ हो ना, हम अपने मन से कुछ नहीं लेना उसमें, ख्याल है ना। तो द्रव्यार्थिक नय की चर्चा हमने की पहले 3 नय, ये पर्यायार्थिक नय में हमने अर्थ नय और व्यंजन नय लिए। अर्थ यानी पदार्थ, कौन सा पदार्थ? वर्तमान पर्याय युक्त वाला, ये हमारा बेस तो वही है ना, वर्तमान पर्याय का, हम उसको उसके आधार से हमने लिया, वर्तमान पर्याय युक्त द्रव्य लिया, वहां भी द्रव्य की बात है, परंतु कैसे वाला? वर्तमान पर्याय से युक्त वाला लेंगे, द्रव्य को जानेंगे यहाँ भी, हाँ, और आगे वाले नए शब्दों को पकड़कर द्रव्य में भेद करेंगे। ख्याल आता है कुछ? जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके उदाहरण पढ़ेंगे, और फिर और दोबारा लेंगे कभी, आगे तो चर्चा आने वाली है इसकी भी। पर्यायार्थिक, पर्यायार्थिक नहीं, रुजु सूत्र नहीं होगा वो, वर्तमान हम बता रहे हैं ना उसको, परंतु वहां भी जीव का ये मनुष्य भाव है, जीव को हम बता रहे हैं, तो उसकी वर्तमान स्थिति कितने काल की, मनुष्य भाव की अपेक्षा जीव की स्थिति कितनी है, ऐसा हम ले रहे हैं। जीव की स्थिति तो अनादि अनंत है, पर उस जीव का वर्तमान पर्याय मनुष्य भाव कितने काल का है, उसकी चर्चा है ना यहाँ। देखो इसको क्या कहा अंत के लाइन, इस तरह वर्तमान पर्याय रूप से, ये शब्द महत्व का है, द्रव्य को देख रहा है, परंतु किस रूप में देख रहा है? वर्तमान पर्याय के रूप में देख रहा है। तो वर्तमान पर्याय रूप से अर्थ को ग्रहण करने वाला होने के कारण यह नय अर्थ नय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। ये जो सात नय हम देख रहे हैं, नयों के ही अलग अलग अपेक्षाओं से क्लासिफिकेशन होते हैं। यहाँ तो हमने मेन डिवीजन द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक किए। द्रव्यार्थिक में ये सात नयों में से पहले तीन लिए और पर्यार्थिक में वो आगे वाले चार लिए, बराबर। ये सभी नयों का अलग क्लासिफिकेशन तीन नयों में हो सकता है। एक तो अर्थ नय, फिर शब्द नय और ज्ञान नय। अर्थ नय यानी पदार्थों को बताने वाला वो अर्थ नय होता है, और उन पदार्थों के वाचक जो शब्द है उसके द्वारा पदार्थों का ग्रहण होता है, तो वो हो गया शब्द नय। और ज्ञान नय क्या करता है? जानता है, तो पदार्थ को भी जानता है, अर्थ यानी वाचक शब्दों को भी जानता है, और ज्ञान अपने से कुछ कल्पनाएं भी करेगा उसको भी जानता है, तो ये सब ज्ञान नय हो जाएंगे। अब यहाँ जो अर्थ नय की बात है, आगे वाला जो प्रश्न पूछेंगे इसलिए मैंने ये बात बीच में उठाई। हम जाएंगे स्लोली आगे, और जितने उदाहरण आएंगे आगे उतना क्लैरिटी बढ़ जाएगी हमें। तो यहाँ अर्थ ने कहा, रुजु सूत्र ने को ही अर्थ ने कहा, वर्तमान पर्याय रूप से द्रव्य को देख रहा है। वो शब्द ने में व्यंजन ने, हाँ, वर्तमान वाले पर्याय आर्थिक के भेद है ना, तो वर्तमान पर्याय से युक्त वाला ही लेना है। हाँ, वो पदार्थ है, परंतु उसमें वर्तमान पर्याय वाला द्रव्य होना चाहिए। द्रव्य तो हमेशा वर्तमान पर्याय से युक्त ही होता है, परंतु हम उसकी भविष्य और भूत की भी चर्चा कर सकते हैं। वो हमने नैगम आदि में देखा था, ख्याल है ना। अब शंका पूछते हैं, नैगम संग्रह और व्यवहार नय भी तो अर्थ नय है, क्योंकि वे भी द्रव्य को जानते हैं। फिर यहाँ पर अर्थ नयों में केवल रुजु सूत्र नय का ही ग्रहण क्यों किया? प्रश्न ख्याल में है? वे भी अर्थ नय है क्योंकि वे भी द्रव्य को जानते हैं, और ये भी द्रव्य को जानता है, भले वर्तमान रूप से जानता है परंतु ये भी द्रव्य को ही जान रहा है, तो इसमें वो भी अर्थ नय और ये भी अर्थ तो होता है, तो होने दो ऐसा कहते। अब पढ़ेंगे, देखो, अर्थ को विषय करने वाले होने के कारण वे भी अर्थ नय है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु वे तीनों नये द्रव्यार्थिक रूप होने के कारण पर्यायार्थिक नहीं है। मेन दो भेद हमने देखे थे, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक के तीन भेद किए, नैगम संग्रह और व्यवहार, और पर्यायार्थिक के रुजु सूत्र वगैरह वगैरह आगे। तो ये तीनों तो अर्थ नय है ही, ये भी अर्थ नय है, ये सभी अर्थ नय है, परंतु ये द्रव्यार्थिक वाला अर्थ नय है और ये पर्यायार्थिक वाला अर्थ नय है, और ये है वे शब्द नय है, व्यंजन नय। व्यंजन के तीन भेद, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। तो इसको भी अर्थ नहीं कहेंगे, तो प्रश्नकार ने क्या पूछा? ये भी पदार्थ को जानने वाला, ये भी अर्थ नहीं होगा? होगा नहीं, है ही, परंतु वो द्रव्यार्थिक के भेद रूप से वो अर्थ नहीं है, और ये पर्यायार्थिक का भेद वाला अर्थ नहीं है। यानी अर्थ नहीं की अपेक्षा देखेंगे तो ये चारों ही अर्थ नहीं है, पदार्थ को विषय करते हैं, परंतु यहाँ तो वर्तमान पर्याय से युक्त पदार्थ को विषय किया है, वर्तमान पर्याय रूप से पदार्थ को ग्रहण किया है। हाँ, देखो, हम उसकी पर्याय की बात, ये हमारे पर निर्भर है, किसी एक द्रव्य को हम उसको सामान्य की अपेक्षा देख रहे हैं कि उसके पर्याय की बात कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है, वक्ता के अभिप्राय के ऊपर निर्भर है। हम पर्याय की दृष्टि से भी बात कर सकते हैं, उनके सामान्य की भी बात कर सकते हैं, यानी उसकी द्रव्य की अपेक्षा भी बात करेंगे या वर्तमान पर्याय से युक्त भी बात करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन अपना अभिप्राय क्या है। जैसे हमने संग्रह और व्यवहार देखा, हम कहेंगे सब जीव एक है, तो हमने सबको इकट्ठा कर दिया। जीव कहते ही वो जीवत्व शक्ति वाले सब जीव है ऐसा लिया, वो संग्रह नहीं कहेंगे। अभी उसी को हम ये जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है, ये पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, तो हमने सत में वो डिफरेंस किया था। यानी जो हमने संग्रहने का विषय एक जीव कहा, वो जीवों को इकट्ठा करने के लिए उसने संग्रह, उसको संग्रह कहा। अब वही व्यवहार नहीं हो सकता है, कैसा, कि उसने सत में भेद किया कि ये जीव जाति, ये पुद्गल है, ये धर्म है, अधर्म है, आकाश है। कोई ऐसा एक शब्द लेकर उसको ये कौन सा नहीं ऐसा नहीं कह सकते। उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, वो क्या वाक्य क्या बोल रहा है, उस पर ये कौन से नए का विषय वो सिद्ध होगा। ख्याल है ना। ये दो अलग क्लासिफिकेशन, वो अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय, ये जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है, और सात नयों का क्लासिफिकेशन अलग है। फिर भी उसमें जो ये पर्यायार्थिक वाला है, अर्थ नय की अपेक्षा से अगर हम उसको देखेंगे तो ये चारों एक बैनर के अंदर आते हैं। जैसे हम मार्गणा में हमने देखा था, मार्गणा की यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे हम इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के कितने भेद है, तो एक इंद्रिय से लेकर पाँच इंद्रिय तक पाँच भेद है, और गति की अपेक्षा चार भेद है। तो गति की अपेक्षा जो चार भेद है उसमें जो मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंश, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय, देव संगी पंचेंद्रिय, नारकी संगी पंचेंद्रिय और तिर्यंश में, ये सारे एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के तिर्यंश सब उसमें आ गए। तो एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। जब हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदलता है तो एक ग्रुप के सब दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। जैसे हम नेशन वाइज डिवाइड करेंगे तो कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, जापानीज है आदि। अब उसमें हम व्यवसाय की अपेक्षा बात करेंगे, कोई अभी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, तो उसमें अमेरिका का डॉक्टर हो या इंडिया का हो या चाइनीज जापानीज का, सभी डॉक्टर्स एक ग्रुप में आएंगे, वो पहले वाले ग्रुप्स नहीं रहेंगे अभी, क्योंकि हमारा जब क्राइटेरिया बदलता है तो उसके ग्रुप्स ये एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। यहाँ तो हम द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की बात की थी, तो नैगम संग्रह व्यवहार द्रव्यार्थिक नय, और बाकी रुजु सूत्र और वो सब चार वो पर्यार्थिक नय। यदि हम अर्थ नय की अपेक्षा बात करेंगे तो नैगम संग्रह व्यवहार और रुजु सूत्र ये सभी अर्थ नय होंगे और बाकी ये शब्द नय होंगे। ख्याल है।
मुझे जो लगता है उनका ऐसा कहना है कि सिद्धों को हम किस तरह से देखेंगे, तो मूल बात तो ऐसे है कि जो वक्ता होता है उसका जो अभिप्राय है वो अभिप्राय के अनुसार नए कहलाए जाते हैं। अब वक्ता को किस बात को बताना है वो उस कैटेगरी में उसका नए होगा। ख्याल में, तो वो सिद्ध पर्यार्थिक नए में जाएगा, क्या द्रवार्थिक नए में जाएगा, व्यवहार नए में जाएगा, ऐसा हम किस में जाएगा उसको हम उठा कर नहीं रख सकते। जो बताने वाला है उसको जो बतानी बात है, अभी हम कहेंगे कि सिद्ध अनंत सुखी है तो हम पर्याय की अपेक्षा बोल रहे हैं या स्वभाव की अपेक्षा बोल रहे हैं, ये हमें नक्की करना है ना पहले, तो उसके अनुसार वो नए का विभाजन होगा। उसको तो ऐसा भी कहा ज्ञातुर अभिप्राय नया है, और वक्ता का अभिप्राय वो भी नए है, जानने वाले का अभिप्राय वो भी नए है। तो अभी अपना नए का अभ्यास नहीं हुआ है, यहाँ जो अपनी बात चल रही है उसी पे अधिक कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आगे की बात समझ में आएगी। मन में अन्य अन्य प्रश्न उलझे तो रखना उधर ही अपने पास, क्योंकि ये जो विषय है ना ये पहले समझने में बहुत कठिन है, और आप तो कभी नए का कुछ गंध ही नहीं अपने यहाँ के लोगों का, तो वो समझने के लिए थोड़ा सा धीरज रखना।
आप पूछ रहे, आप पूछ रहे, लगता है उसके अभी ने अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं इसको पहले हम बराबर समझेंगे।
आपके पूछने में ऑब्जेक्शन नहीं है वो, हाँ ऐसा उल्टा अर्थ मत लेना। मैं ये समझा रहा हूँ कि जो जिस अपेक्षा से यहाँ जो बात कही जा रही है उसको पहले पकड़ना। और मैंने कल उज्ज्वला को भी बोला था, अरविंद भाई साक्षी है, कि सबको साथ नए घटाना मैं चैलेंज से कहता हूँ, यहाँ कम से कम 5 लोग तो होंगे कि जिनके सातों नए याद नहीं है। अभी बात ऐसी है कि नए जब तक नाम ही याद नहीं रहेंगे हमारे, तो किसके बारे में क्या कहा जा रहा है क्या मालूम। लेकिन अरविंद विमल जा रही हम तो घणो टाइम लग से, टाइम भले लागे भाई,
जरा बुलवा बोलो साथ नहीं,
नहीं नहीं आप बोलो
नहीं नहीं ले लो
नहीं आप वक्ता है, मैं तो बीच में डब डब करता हूँ, दूसरा कुछ
बात नहीं है, ये तो सबके कल्याण की बात है। हाँ पिना, सात नाम कही सको? देखो हम सब पहले एक बार रिवीजन करेंगे, फिर मैं पूछूंगी। हमारे पहले में पहले दो डिवीजन करना है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, सब साथ में बोलना। दो कौन से भेद है? पर्यायार्थिक नय। अब द्रव्यार्थिक नय के हम तीन भेद करेंगे, उसमें मैं पहले बोलूंगी नाम, आप रिपीट करना। नयगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीनों क्या हुए? द्रव्यार्थिक नय। अब पर्यायार्थिक भेदों के नाम देखेंगे। रुजु सूत्र नय, शब्द ने, समभिरूढ़ ने, और एवं भूत ने। कोई कह सकेगा सात नाम? हाँ अशोक भाई, हाँ नैगम, हाँ उसके पहले संग्रह, संग्रह और व्यवहार, बराबर। और पर्यायार्थिक ने के चार भेद है, कौन कौन से? हाँ, पहला कौन सा है? वर्तमान को बताने वाला, उसको हमने क्या कहा था? रुजु सूत्र ने। हाँ फिर हाँ, शब्द एवं भूत, कौन कहेगा?
देखो ये व्यवहार नहीं के हाँ। जो चार भेद है ना, वो क्रम से ही हमें याद रखने हैं। क्यों क्रम चाहिए, उसका भी पीछे कुछ हेतु है, वो हेतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो ख्याल में आएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये जो व्यवहार नय के जो चार नय हमने देखे, उसमें दूसरे नय का नाम क्या है? बोलो प्रति बताई। शब्द नय, चौथे का नाम क्या है? एवं भूत। पहले का नाम क्या है? रुजु सूत्र। और तीसरे का नाम क्या है साहब? हाँ समभिरूढ़। तो हमने चार तो देख लिए, तो चारों के नाम कौन एक साथ बताएगा? प्रति बताई आप बोलो। रुजु सूत्र ने, शब्द ने, समभिरूढ़ ने, एवं भूत ने। डॉक्टर साहब आप बताएंगे? रुजु सूत्र ने, शब्द ने, समभिरूढ़। हाँ देखो ये क्या है, ये याद बिल्कुल होने चाहिए। हाँ हम आपको बोलेंगे घर पे याद करके आओ, तो कोई याद करने वाला नहीं, किसको फुर्सत ही कहाँ है, नाश्ता करने को फुर्सत नहीं है।
भागम भाग
भागम भाग है। हाँ तो ये बिल्कुल याद होंगे तो आगे का विषय हमारे दिमाग में आएगा। आपको थोड़ा खोटा लगेगा क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये उज्ज्वला सिखाती है, लेकिन क्या करूँ, उसने थोड़ी सी परमिशन दी ली इसलिए उठा लिया।
अभी सातों ही पूछ लिए अभी।
हाँ साहब हमारे देवेंद्र भाई सातों नहीं बताएंगे। पहले का कौन सा?
रुजु सूत्र।
हाँ कुछ गलती हो रही है? हाँ अरविंद भाई बताइए। हाँ हाँ शब्द नहीं, तो पहला कौन सा? रुजु सूत्र। दूसरा
शब्द
नहीं,
पहले समभिरूढ़। देखो हमने क्या, देखो क्या कहा था, रुजु सूत्र ने जिसको एक्सेप्ट किया है उसमें से कुछ को हम वो चालनी लगाएंगे, फिर वो शब्द ने उतने शब्दों को एक्सेप्ट करेगा।
देखो मैंने इसने बताया था, मैं बोलूंगी आप सब रिपीट करना, लेकिन हमें जिनेंद्र भगवान ने बताई हुई बात को भी रिपीट करने में शर्म लगती है, कमीपना लगता है। अरे हम क्या छोटे बच्चे केजी क्लास के? तो भैया याद करना, किसी ने ना बताया तुझे। चलो आप रिपीट करो।
हाँ, देखिए हम हाँ, आप बता।
नयगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ये काय के भेद है? द्रव्यार्थिक नय के भेद है। बहुत अच्छा। रुजु सूत्र ने, शब्द ने, समभिरूढ़ ने, एवं भूत ने। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं, ये जो अरविंद भाई मेहता है उन्होंने नए चक्र का गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। हाँ, वो करते नहीं थे, मैं उनके पीछे लगा। जैसे हमारे अरविंद भाई दोषी हमारे पीछे लगते हैं, वैसे हमने उनके पीछे लगे। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ? अच्छा, तो अभी हम यहीं रुकते हैं। मैं समझता हूँ कि सबको याद हो गए हैं, लेकिन एक ट्राई लेता हूँ, हमारे विनोद भाई बताएंगे सातों नए उनके नाम। नयगम नए, बहुत अच्छा, सब बढ़िया बताया उन्होंने। मैं सोच रहा था कि मैं रिपीट करूं ताकि आगे सीडी सुनने वाले को भी आ जाए, लेकिन आपने बहुत गाड़ी तेजी से चलाई, बहुत अच्छी बात है। सातों नाम, हाँ, कल मैं पहले आते ही, आप 5 मिनट पहले आएंगे तो हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारी ये 1.5 घंटे के आगे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। 5 मिनट पहले आइए, फिर हम देखते हैं। चलो,
हाँ, देखो ये शंका फिर हम देखते हैं। नैगम संग्रह और व्यवहार नय भी तो अर्थ नय है, यानी जो हमने द्रव्यार्थिक के तीनों भेद देखे थे वे भी अर्थ नय है। फिर यहाँ पर अर्थ नयों में केवल रुजु सूत्र नय का ही ग्रहण क्यों किया? क्योंकि अर्थ ने किसका भेद देखा था हमने? पर्यायार्थिक का। तो पर्यायार्थिक में ये अकेला ही अर्थ नय वाला है। द्रव्यार्थिक के तीनों अर्थ नय है ही है, पर पर्यायार्थिक में जो हमने अर्थ नय और व्यंजन नय ऐसे दो भेद देखे थे, उसमें अर्थ नय में एक अकेला रुजु सूत्र नय ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? नयगम संग्रह व्यवहार और रुजु सूत्र ये सभी अर्थ नय है, पदार्थ को विषय करने वाले हैं। और आगे वाले जो नए हैं वो शब्दों के द्वारा पदार्थों में कुछ भेद करेंगे, पदार्थों का ये शब्दों का आधार लेंगे। देखो क्या है, अर्थ को विषय करने वाला होने के कारण वे भी अर्थ नए हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। शंकाकार का जो कहना था तो उसमें कोई भेद नहीं, किंतु वे तीनों नए द्रव्यार्थिक रूप होने के कारण पर्यायार्थिक नहीं है, यानी द्रव्यार्थिक होते हुए अर्थ नय है और रुजु सूत्र नय पर्यायार्थिक होते हुए अर्थ नय है। अब व्यंजन नय तीन प्रकार का है। व्यंजन का अर्थ भी शब्द होता है और उसका एक सब डिविजन भी शब्द नाम है, इसलिए यहाँ व्यंजन ये नाम रखा है। व्यंजन नय एक अर्थ नय, पर्यायार्थिक के दो भेद। कौन से दो भेद? बिना पर्यायार्थिक नय के दो भेद, एक अर्थ नय एक व्यंजन नय। कौन कौन से दो? एक अर्थ नय और दूसरा व्यंजन नय। अब व्यंजन नय के तीन भेद आप सब रिपीट करना, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। एवं भूत नय, तो व्यंजन नय तीन प्रकार का है, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। ये क्या करते हैं? तो शब्द के आधार से अर्थ ग्रहण करने में समर्थ शब्द ने है। आधार किसका लिया? शब्दों के आधार से अर्थ को ग्रहण करना, पदार्थ को ग्रहण करना, पदार्थ को जानना, ग्रहण करना है ने जानना, तो पदार्थों को जानने में समर्थ ये शब्द ने है। क्योंकि ये शब्द ने अभी व्यंजन ने का पहला भेद चल रहा है, रुजु सूत्र ने वर्तमान समय को विषय करने वाले वो सब ले लिया, अब यहाँ शब्दों के आधार से वस्तु को जानने वाले ये नए हैं। तो इसमें जो शब्द नए है वो चुन चुन कर कुछ शब्दों को स्वीकार करेगा, जिसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उन शब्दों को ये स्वीकार नहीं करेगा। अकेले उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं कह सकते, क्योंकि व्याकरण में भी ऐसे अपवाद होते हैं कि जो अलग अलग संख्या या अलग जो लिंग है वो एक साथ स्वीकार कर लेता है, ऐसे अपवादात्मक बातें होती है, परंतु यहाँ तो वो भी नहीं चलेगा, उसके उदाहरण देखेंगे। और यहाँ मुख्यतः संस्कृत भाषा के अनुसार ही उदाहरण दिए हैं। तो क्योंकि यह नए, कौन सा नए? शब्द नए, लिंग, संख्या, काल, काल यानी भूतकाल, भविष्यकाल, ये जो कुछ काल की बात है, कारक, कारक यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, यानी जिसको हम कहते हैं वो तो कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान वगैरह, करण वगैरह सब, ये विभक्तियां लगती है, तो उसको कहते हैं कारक। पुरुष यानी ये कहते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या मैं, हम, ये सब प्रथम पुरुष होते हैं, या उत्तम पुरुष कहना उसको, और आप, तुम, तू, ये सब द्वितीय पुरुष हो गए, और अन्य जो है नहीं, वो नहीं, वो तरतमता होती है, आई एंड वी, हाँ क्या कहते हैं उसको, दे नहीं होगे उसमें,
नहीं नहीं देखो ये तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जैसा कहते हैं ना,
फर्स्ट पर्सन वचन अलग है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन,
यहाँ देखो लिंग यानी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसको कहेंगे, संख्या यानी एक दो शंबर जो भी होती है सौ हजार, काल यानी तो तीन काल बताइए, कारक यानी छह विभक्तियां बताई हैं, और पुरुष यानी अभी जो हम देख रहे हैं फर्स्ट
पर्सन सेकंड पर्सन
सेकंड पर्सन,
यानी मैं, हम, ये फर्स्ट पर्सन हुआ, तू, तुम, आप, ये सब
सेकंड
पर्सन में आएंगे, वो विभक्ति है, वो विभक्ति है प्रथमा द्वितीय तृतीय,
हाँ
उसमें संबोधन आती है ना,
संबोधन भी और षष्ठी भी है,
और षष्ठी भी है,
षष्ठी को नहीं लेते हैं
यह वाक्य में, तो उसमें कार्य होने में षटकारक लगते हैं, अब यहाँ तो सप्तमी षष्ठी सबको ले लेंगे, उसमें से नाम सेम है उनके, उसमें से छह ही कारक लिए हैं, परंतु षष्ठी विभक्ति एक आती है और एक संबोधन आता है, उसको षटकारक में हम नहीं लेते, कार्य होने में जो षटकारक लगाते हैं उसमें वो षष्ठी विभक्ति नहीं लगती है, और ना ही संबोधन, हम उसको पूछें जो ये हे राम हे सीता, इसको संबोधन कहते हैं, वो भी कार्य में के होने में उसका कोई वहाँ यानी हाथ भार नहीं है उसका, इसलिए उसका नहीं गिनते वहाँ, लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुसक लिंग वाचक जो शब्द होते हैं वो लिंग, संख्या यानी एक वचनी द्विवचनी ऐसे कुछ होते ना, हाँ उसका वचन होगा ना, कितने एक वचन ही हो गए, एक वचनी कहते हम, एक वचनी द्विवचनी अनेक वचनी बहुवचनी, बहुवचन कहते ना, यानी हम सब ऐसा है वो हम बहुवचनात्मक है, और मैं कहेंगे तो वो एक वचनात्मक है, ऐसे तो मैं और जाएंगे कहेंगे तो कैसा होगा, मैं तो जाऊंगी या मैं जा रही हूँ कहेंगे, और आपके लिए कहना है तो आप जा रहे हैं ऐसा कहेंगे, तो मैं जा रहे हैं ऐसा कहेंगे क्या, तो ये मिस्टेक हुई ग्रामेटिकली, तो उसको ये स्वीकार नहीं करता है, चल गए, तो लिंग की बात है, इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग वो इकट्ठा एक अर्थ को बताने वाले तीन अलग अलग लिंग के शब्द नहीं चलेगे, संख्या यानी कौन से वचन, एक वचन द्विवचन या बहुवचन, यानी एक साथ उनके वहां स्वीकार नहीं होगा, एक ही किसी बताने के लिए, हाँ संख्या एक वचनात् वचन में बताने वाला और बहुवचन में बताने वाला, वो एक साथ हम यूटिलाइज नहीं करेंगे उन शब्दों को, काल कारक पुरुष अभी बता दिए, और उपग्रह के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाले, उपग्रह का वो भी संस्कृत में चलता है, जैसे तिष्ठ शब्द है, स्था धातु का तिष्ठ होता है, तिष्ठ यानी खड़ा रहना या बैठना या स्थापन होना, तो उसके पीछे कोई उपसर्ग लगता है, संतिष्ठते, तिष्ठ का करेंगे तो तिष्ठती यानी वो बैठा है या खड़ा है, और संतिष्ठते यानी वो, तो उसका अलग पद्धति से उसका व्याकरण बदल जाता है, अभी जिसको संस्कृत मालूम है वो परस्मय पद आत्मने पद में चेंज हो जाता है, अभी वो क्या है वो देखेंगे,
देखो हम इन शॉर्ट में समझेंगे कि राम ने आम खाया, और इसको हम दूसरी तरह से ऐसा बोलते कि आम राम से खाया गया, तो ये दो पद्धति है वो संस्कृत में विशेष रूप से परस्मय पद और आत्मनय पद इस तरह से वो बताते हैं, अभी जिनको संस्कृत मालूम होगा थोड़ा बहुत तो समझेंगे, और आप नहीं भी समझो तो आपने कुछ गंवाया नहीं है, बस चिंता नहीं करो आगे बढ़ो।
अब हाँ हम पढ़ेंगे अभी। स्त्रीलिंग, अभी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग का कथन करना और पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग का कथन करना आदि लिंग व्यभिचार है। देखो व्यभिचार है ना, दोष।
देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, शब्द नहीं जो है वो इस तरह के व्यभिचार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस इतना ही लेना है, उसमें और कुछ नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं, जो ये सारी बातें हैं ये तो इसके पहले का जो रुजु सूत्र नहीं है वो तो एक्सेप्ट करेगा। अब उसके बाद जो चलनी लगी है, छलनी, तो उसमें ये जो छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म जो बातें हैं वो एक्सेप्टेंस शब्द नहीं में नहीं होगा। शब्द नहीं जो एक्सेप्ट करेगा वो उसके आगे का समभिरूढ़ नहीं एक्सेप्ट करेगा। समभिरूढ़ जो एक्सेप्ट करेगा, जो भी शब्द है जो भी वाक्य है, वह आगे वाला एवंभूत नहीं लेगा। ये फिर है, हमको क्यों दिमाग को तकलीफ करते हैं, ये पढ़कर क्या फायदा है, वो भी क्या फायदा है, किस लिए पढ़ना है, वो भी बात आगे आने वाली है। वो सस्पेंस रखना चाहिए ना।
तो ये लिंग व्यभिचार, जैसे यहाँ दृष्टांत देते तारका स्वाति, सेकंड लाइन है उसमें, पैराग्राफ की सेकंड लाइन। तो तारका स्वाति है, अपने नाम अभी नक्षत्रों के तारकाओं के नाम है अलग अलग, तारका स्वाति है। इस प्रयोग में तारका शब्द स्त्रीलिंग है और स्वाति शब्द पुल्लिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना लिंग व्यभिचार है। यानी वो दो अलग अलग लिंग एक साथ उन्होंने यूज किया तो वो नहीं चलेगा, शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, अवगमो विद्या, अवगम विद्या है, अवगम यानी नॉलेज, ज्ञान होना। हम कहें ना ज्ञान विद्या है, तो ज्ञान क्या है मराठी में, तो वह ज्ञान, नपुंसकलिंग मराठी, और विद्या स्त्रीलिंग है, तो उसको नहीं कह सकते एक साथ। तो अवगम विद्या, इस प्रयोग में अवगम शब्द पुल्लिंग है, संस्कृत है ना ये, और विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है। ये लिंग में कोई डिफरेंस आता है तो वो एक साथ नहीं चलेगा। वीणा आतोद्यम, वीणा आतोद्य है, मेरे ख्याल से आतोद्य का अर्थ वाद्य होता होगा, वाद्य ने हम वो नपुंसकलिंग हुआ, हाँ। और वीणा तो स्त्रीलिंग है, यहाँ पर वीणा शब्द स्त्रीलिंग है और आतोद्य शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है, वाद्य। आयुधम शक्ति, आयुध शक्ति है, यहाँ पर आयुध शब्द नपुंसकलिंग है और शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार होता है। हाँ, वो नपुंसकलिंग है, शस्त्र लिखो ना, शस्त्र शक्ति है, तो शस्त्र तो नपुंसकलिंग हुआ और शक्ति तो स्त्रीलिंग हुआ, तो ये एक साथ नहीं चलेगा। नॉलेज इज पावर, हाँ, ज्ञान तो नपुंसकलिंग है, मराठी में तो हम नपुंसकलिंग में लेते हैं ज्ञान, हाँ, किसका ज्ञान, नहीं नहीं हिंदी में किसका ज्ञान कहेंगे, ये किसका ज्ञान है, बराबर, मराठी गुजराती में तो नपुंसकलिंग आता है, हिंदी में तो ज्ञान को पुल्लिंग पुल्लिंग आता है हिंदी में, मराठी गुजराती में तो तीनों लिंग लगेंगे। हाँ, अभी आगे का उदाहरण है पटो वस्त्रम, पटो वस्त्र है, पट है ना वो कपड़ा, हम कहें वो कपड़ा, तो कपड़ा और ते वस्त्र, ये नपुंसकलिंग, वस्त्र तो नपुंसकलिंग हुआ और पट ये तो पुल्लिंग हुआ, पट वस्त्र, यहाँ पर पट शब्द पुल्लिंग है और वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है।
तो मराठी में
पट के हो, तो पट है, बड़ा पट होता ना ऐसा लंबा ऐसा फैला हुआ, उसको पट कहेंगे के वो है। हाँ ठीक है आगे। हाँ लिंग विचार है, आयुधम परशु, आयुध फरसा है। यहाँ पर आयुध शब्द नपुसक लिंग है और परशु शब्द पुल्लिंग है। यह हमें उदाहरण के तौर पर अलग अलग उन्होंने दिखाए हैं, तो हमें क्या समझना है कि दोनों अलग अलग लिंग वाले शब्द एक पदार्थ को बताने वाले हैं, तो वो नहीं हो सकता, ये शब्द नहीं उसको स्वीकार नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं, वो नाम निक्षेप में कुछ भी चलेगा। इसलिए नपुंसक लिंग के स्थान पर पुल्लिंग शब्द कहने से लिंग व्यभिचार है, ये ख्याल आया अभी। लिंग में ऐसा डिफरेंस नहीं चलेगा, शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब आगे, एक वचन आदि की जगह द्विवचन आदि का कथन करना संख्या व्यभिचार है, आया ना, ये संख्या में वचन आ गया। जैसे नक्षत्र पुनर्वसु है, अनेक पुनर्वसु तो अनेक वचनी है, और वो नक्षत्र तो वह नक्षत्र है, एक वचनी है। पुनर्वसु जो अनेक तारकाओं के समूह को वो पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं, आप भाई कुछ जानते होंगे। हाँ, यहाँ पर नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और पुनर्वसु शब्द द्विवचनांत है, दो को बताने वाला, इसलिए एक वचन के स्थान में द्विवचन कर उसका कथन करने से संख्या व्यभिचार है। नक्षत्रम शतभिषज, नक्षत्र शतभिषज है। यहाँ पर नक्षत्र शब्द एक वचनांत है और शतभिषज शब्द बहुवचनांत है, यानी उसमें बहुत तारकाएं हैं और उसको एक नक्षत्र कह देना, ये दोष आता है। इसलिए एक वचन के स्थान में बहुवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। गोदव ग्राम, गोदव ग्राम है, यहाँ पर गोदव शब्द द्विवचनांत है और ग्राम शब्द एक वचनांत है, इसलिए द्विवचन के स्थान में एक वचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। पुनर्वसु पंच तारका, पुनर्वसु पांच तारका है, यहाँ पुनर्वसु द्विवचनांत है और पंच तारका शब्द बहुवचनांत है, इसलिए द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। आमराहा वनम, आमों के वृक्ष वन है, अनेक, अब ये समझने में आसान है, आमों के वृक्ष अनेक है और वो सबको मिलकर एक वन है कह दिया, तो ये संख्या व्यभिचार हुआ। यहाँ पर आम्र शब्द बहुवचनांत है और वन शब्द एक वचनांत है, इसलिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन का कथन करने से संख्या व्यभिचार है। देव मनुष्य उभौ राशि, देव और मनुष्य ये दो राशि हैं। यहाँ पर देव मनुष्य शब्द बहुवचनांत है और राशि शब्द द्विवचनांत है, उभौ राशि यानी दो राशि है ऐसा, इसलिए द्विवचनांत है, इसलिए बहुवचन के स्थान पर द्विवचन शब्द का कथन करना संख्या व्यभिचार है। तो इसकी बात हम कल फिर और उठाएंगे, ये जो लिंग व्यभिचार संख्या व्यभिचार हमने पढ़ा है, ये सभी प्रकार से कैसे व्यभिचार होता है उसका दोष टालकर शब्द ने उसको स्वीकार करेगा, ये बात इसमें आती है। जावाणी के ज्ञान ते सू